आधुनिक काल में इतिहास की अवधारणा कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री इन मॉडर्न एज, युग की परिवर्तन परिस्थितियों के अनुरूप इतिहास की अवधारणा में परिवर्तन होता रहता है। यूरोप के इतिहास में पुनर्जागरण काल से आधुनिक युग का आरंभ माना जाता है। पुनर्जागरण काल को मध्य युग तथा आधुनिक युग को संक्रांति काल कहा गया है। इसमें मध्य युग के ईश्वर परक दृष्टिकोण के स्थान पर मानव परक विचार का उत्थान होने लगा। जीवन में सर्वत्र परिवर्तन का साम्राज्य था। विश्व की विशालता और विविधता मानस पटल पर अंकित हो रही थी। मानव बुद्धि की सर्वतोमुखी ज्योति मानव समाज की जटिल समस्याओं को आलोकित करने में समर्थ समझी जाने लगी। नियति में सभी का अटल विश्वास था, परंतु मनुष्य अपने निगमन तथा संतुलन से नियति को भी अपने अनुरूप बना सकता है। मैकियावेली के विचारों में यह भाव सर्वत्र दिखाई देता है। मध्ययुगीन इतिहास की भांति आधुनिक युग के इतिहास का जगत को निकृष्ट तथा पृष्ठ संख्या 66 अस्थायी नहीं समझते थे। वे इसे सत्य तथा यथार्थ मानते थे। इतिहास में ईश्वरीय इच्छा को कारण न मानकर मानवीय इच्छा की प्रबलता को स्वीकार किया गया। पुनर्जागरण कालीन इतिहासकारों ने ईसाई संप्रदाय के वृत्तांत के स्थान पर उदीयमान नगरों तथा राज्यों का इतिहास लिखना प्रारंभ किया, क्योंकि इनका संबंध मानवीय प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ था। इनके द्वारा विभिन्न मनुष्य पाप और पुण्य दोनों से भरे हुए यथार्थ व्यक्ति थे। उनकी उन्नति का प्रमुख कारण उनकी चारित्रिक गरिमा थी। अध्यवसायी मानव समाज की सर्वांगीण अनुसंधान ही इतिहास का लक्ष्य बन गया। परिणाम स्वरूप पुनर्जागरण कालीन इतिहास अवधारणा प्रवृत्ति मूलक बन गए। इसका स्वरूप व्याख्या परक न होकर घटना प्रधान हो गया। विश्वव्यापी दृष्टिकोण का महत्व उत्तरोत्तर क्षीण होता गया और उसका स्थान क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक इतिहास ने ग्रहण किया। इतिहास धर्म प्रधान न होकर राजनियमित होने लगा। पुनरुत्थान कालीन मानववाद आधुनिक युग में बुद्धिवादी इतिवृत्तात्मक विद्वत्तापूर्ण तथा दर्शन प्रधान रूप में पल्लवित हुआ। पुनरुत्थान काल ने मानसिक क्षितिज को विस्तृत किया। मध्ययुगीन आदर्शों की निरस्ता तथा तपश्चर्या की शुष्कता के स्थान पर मानव जीवन की रागात्मक सरसता और उसकी बहुमुखी प्रगति का उल्लास इतिहास और संस्कृति को नई प्रेरणा तथा स्फूर्ति से अभिसिंचित करने लगे। मनुष्य की जीवन लीला के प्रति नूतन अभिरुचि उमड़ पड़ी। स्पेंगलर ने लिखा है कि आजकल यूरोप के नगरों के असंख्य घंटाघरों की निरंतर टन-टन काल की कराल गति का कठोर परिचय देती हुई यूरोपीय संस्कृति की ऐतिहासिक प्रवृत्ति का सुंदर साक्ष्य प्रस्तुति करती है। बुद्धिवादी युग में इतिहास की अवधारणा कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री इन रेशनल एज 17वीं सदी से 18वीं सदी में प्रवेश के साथ विचारों के जगत और चिंतन के क्षितिज में एक महान परिवर्तन दिखाई देता है। गैलीलियो तथा न्यूटन ने विचारों की क्रांति को गति प्रदान की। डेकार्ट ने विश्लेषणात्मक पद्धति का श्रीगणेश करके आधुनिक विज्ञान का प्रवर्तन किया। कुछ विद्वानों ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि साहित्य की व्याख्या के लिए गणित अनिवार्य है। राजनीति अर्थव्यवस्था तथा इतिहास की प्रक्रिया को यांत्रिक समझा जाने लगा। हॉब्स ने शक्ति संतुलन नामक राजनीतिक यंत्रवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मॉन्टेस्क्यू ने सबसे पहले राजनीतिक संस्थाओं की उत्पत्ति तथा विकास के अध्ययन में आलोचनात्मक शक्ति तथा नियम निर्माण का परिचय दिया। उनके अनुसार पृष्ठ संख्या 67 जलवायु तथा अतीतकालीन धर्म कानून आचार विचार मानव जीवन की गति और स्वरूप को निर्धारित करते हैं। वाल्टेयर को इतिहास दर्शन का जन्मदाता माना जाता है। उन्होंने वैज्ञानिक तथा आलोचनात्मक पद्धति का प्रयोग इतिहास के अध्ययन में अनिवार्य बताया। परिणाम स्वरूप मनुष्य का धर्म आदि की परंपराओं से संबंध विच्छेद कर दिया। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान यह है कि उच्च आदर्शों को अतीत की समाधि से निकालकर भविष्य के गर्भ में आरोपित किया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि मानव समृद्धि में प्रत्येक पीढ़ी तथा युगों का योगदान होता है। काल की गति के साथ साथ मानव प्रगति पथ पर निरंतर अग्रसर है। प्रगति इतिहास की निश्चित प्रवृत्ति है। इस विकासकालीन इतिहास का आरंभ वाल्टेयर से होता है। उन्हें प्रबुद्ध युग एज ऑफ एनलाइटमेंट का सच्चा प्रतिनिधि कहा जा सकता है। लैनसन ने स्पष्ट लिखा है कि इतिहास की वैज्ञानिक अवधारणा का एकमात्र श्रेय वाल्टेयर को है। रूसो ने मानव स्वतंत्रता पर विशेष जोर दिया। मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होकर भी सामाजिक राजनीतिक बंधनों से जकड़ा हुआ है। पशु पक्षियों की अपेक्षा मनुष्य में स्वतंत्रता प्राप्त करने की अधिक क्षमता है। सामाजिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन कर उन्होंने क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। वीको ने इतिहास अध्ययन को आवश्यक बताया। उनके अनुसार इतिहास मानव की चेष्टा और चिंतन का फल है। इसका स्वरूप समाज और संस्थाओं के निर्माण से परिपूर्ण है। इतिहास का संबंध मात्र अतीत से ही नहीं है, बल्कि समाज के वर्तमान संविधान से है। इसमें समानता तथा निरंतरता की प्रवृत्ति होती है। समानता का आधार यह है कि मनुष्य स्वयं इतिहास का निर्माता है। मानव प्रकृति में आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है, उसमें पूर्व स्थिति और स्वरूप के चिन्ह विद्यमान रहते हैं। यह चक्रवत घूमता रहता है। परिणाम स्वरूप सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तन होते रहते हैं। उन्होंने तीन युगों की कल्पना, देवयुग, वीरयुग, मानव युग। इस प्रकार उन्होंने इतिहास अवधारणा को एक नवीन स्वरूप प्रदान किया। उन्हें तुलनात्मक तथा वैज्ञानिक इतिहास दर्शन का प्रवर्तक कहा जा सकता है। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश के अनुसार 15वीं सदी में जर्मनी में जिस बौद्धिक पुनरुत्थान का सूर्योदय हुआ, वह रिफॉर्मेशन से प्रादुर्भूत 30 वर्षीय युद्ध में मेघों से दबकर धूमिल पड़ गया। 17वीं सदी में विचारकों ने पुनः बौद्धिक जीवन को सक्रियता प्रदान की। पृष्ठ संख्या 68। ऐसे विचारकों में लाइबनित्ज का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उसने यथार्थ चित्र पर विशेष जोर दिया। उसके अनुसार सत्य रहित इतिहास जीवन रहित शरीर है। इतिहास के आख्यानों को निकालकर उसे सत्य की आधारशिला पर प्रतिष्ठित करना चाहिए। कांट के इतिहास जगत में अपने विचारों से एक क्रांति पैदा कर दी। उसका दृष्टिकोण पूर्णतः ऐतिहासिक था। उसके अनुसार बाह्य प्रक्रिया प्रकृति मनुष्य को नियंत्रित करती है, मनुष्य द्वारा नियंत्रित नहीं होती। ऐतिहासिक परिवर्तनों का अन्वेषण ही वास्तविक दर्शन है। ऐतिहासिक परिवर्तन सतत प्रक्रिया है तो सभ्यता और स्वतंत्रता की ओर अग्रसर है। इतिहास तथ्यों का संकलन या घटनाओं की तालिका मात्र नहीं, बल्कि आंतरिक विकास की एक प्रक्रिया है। कांट के अनुसार विश्व की प्रक्रिया नियमबद्ध है, एक प्राकृतिक योजना की भांति गतिशील है और मनुष्य इसी योजना के अंतर्गत क्रियाशील है। कांट ने स्पष्ट लिखा है कि इतिहास दूर दृश्य जगत से अंतर जगत की ओर अग्रसरित होने की प्रक्रिया है। इसी को उन्होंने मानव स्वतंत्रता की प्रगति कहा है। मनुष्य धीरे धीरे प्राकृतिक नियमों से मुक्त होकर सामाजिक नियमों में बंध रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि इतिहास की योजना का उद्देश्य मनुष्य को पूर्णतः स्वतंत्र करना है। उन्होंने इतिहास को इतिहास की बुद्धिमत्ता की प्रगति तथा उन्नति कहा है। कांट अतीत के विषय में निराशावादी थे, परंतु भविष्य के प्रति आस्थावान थे। उनके अनुसार इतिहास हमें ऐसे युग की ओर ले जा रहा है जब बौद्धिकता का पूर्ण साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। उस समय पाप और स्वार्थ की भावना समाप्त हो जाएगी। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय जीवन तथा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में समन्वय स्थापित हो जाएगा। इस दृष्टि से इतिहास का अध्ययन सार्वजनिक तथा विश्वव्यापी होगा। इसमें दार्शनिक प्रवृत्तियों का सम्मिलन निश्चित है। मानव का आत्मिक विकास इसका मुख्य विषय है। बौद्धिकता की उन्नति इसकी प्रधान धारा है। कांट के इतिहास दर्शन की 4 विशेषताएं हैं। 1, इतिहास सार्वजनिक और विश्वजनीन प्रक्रिया है। 2, इसमें प्रगति की एक योजना निहित है। 3, इसकी मौलिक प्रवृत्ति बौद्धिकता तथा नैतिकता का विकास है। 4. यह विकास अज्ञान, स्वार्थ तथा वासना आदि पर निर्भर तामसिक वृत्ति की क्रीड़ा का परिणाम है। रोमांटिक युग में इतिहास की अवधारणा, कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री इन रोमांटिक एज। इतिहास की अवधारणा समय तथा परिस्थितियों द्वारा निरंतर प्रभावित होती रही है। प्रबुद्ध युग का प्रभाव इतिहास की अवधारणा पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पृष्ठ संख्या 69। बुद्धिवादी युग में इतिहास चिंतन की विशेषता तर्क प्रधान रही है। रूमानी युग में इतिहास चिंतन का आधार भावना तथा कल्पना थी। तत्कालीन दार्शनिकों तथा विचारकों ने जीवन और जगत के आंतरिक रहस्य को भावना और कल्पना के माध्यम से समझने का प्रयास किया। इस दृष्टिकोण को रूमानी कहते हैं। अतीत के सौंदर्य का साक्षात्कार करने के लिए विचारकों ने कल्पना तथा भावना के प्रवाह में निमग्न होना अपरिहार्य समझा। उनकी दृष्टि में वर्तमान परिवेश में ही अतीत को समझना संभव है। इस युग के विचारकों ने इतिहास को समष्टि प्रधान माना है, व्यक्ति प्रधान नहीं। मनुष्य इतिहास का कर्ता नहीं है, बल्कि उपकरण और उपज होता है। हर्डल रूमानी युग के महान दार्शनिक एवं विचारक थे। उन्होंने मानव जीवन तथा प्राकृतिक विकास के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। विकास के पथ पर चलता हुआ मनुष्य विभिन्न जातियों में विभक्त होता है। प्रत्येक जाति के भौगोलिक परिवेश में अपनी शैली, अपने आदर्श होते हैं। मानव इतिहास और प्रकृति दोनों काल में गतिशील तथा जीवित हैं। इतिहास में उन्होंने व्यक्ति की प्रधानता को स्वीकार किया है। राष्ट्रों के स्वरूप तथा इतिहास में विभिन्नता का कारण भौगोलिक परिस्थितियों में विभिन्नता है। हर्डर ने जिस नवीन इतिहास दर्शन का सूत्रपात किया, उसका पूर्ण विकास महान दार्शनिक इतिहासकार हीगेल द्वारा संपन्न हुआ। कॉलिंगवुड के अनुसार इतिहास को दार्शनिक स्वरूप प्रदान करने का एकमात्र श्रेय हीगेल को है। उन्होंने इतिहास दर्शन का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार इतिहास घटनाओं का संकलन तथा अन्वेषण नहीं, उनमें निहित कार्य कारण प्रक्रिया की गवेषणा है। विश्व इतिहास की मूल प्रवृत्ति मानव स्वतंत्रता का विकास है। उनकी दृष्टि में मानव स्वतंत्रता का अर्थ स्वतंत्रता की चेतना है। अतः स्वतंत्रता के विकास का तात्पर्य चेतना का विकास है। इसी को उन्होंने नैतिक बुद्धि का प्रसार कहा है, जो सामाजिक संबंधों का बाह्य रूप धारण करता है। ये सामाजिक संबंध राष्ट्र के रूप में परिणत होते हैं। अतः राष्ट्र नैतिक बुद्धि की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। उन्होंने इतिहास प्रक्रिया में विचार के तीन स्वरूप, वाद, प्रतिवाद और साम्यवाद के सिद्धांत को स्पष्ट किया। इन नियमों के पृष्ठ संख्या 70। अवधारणा में इतिहास दर्शन का लक्ष्य राष्ट्र के विकास क्रम की गवेषणा है। इसका उद्देश्य भविष्य का अनुमान करना नहीं, अपितु वर्तमान परिवेश में अतीत का अन्वेषण है। हीगेल ने प्रकृति तथा इतिहास में अंतर को स्वीकार किया है। प्रकृति की प्रक्रिया चक्रात्मक है। सूर्योदय, ऋतु परिवर्तन, ज्वार भाटा का स्वरूप प्रायः समान होता है। इसके विपरीत इतिहास चक्रवत नहीं है, इसका स्वरूप रेखावत है। इसकी आवृत्तियों में सदैव नवीनता रहती है। एक युद्ध दूसरे से सर्वथा भिन्न होता है। सर्वप्रथम उन्होंने चेतना तथा विवेक को सार्वभौमिक स्वरूप प्रदान किया है। चेतना अनश्वर है। प्रत्येक युग की ऐतिहासिक घटनाएं चेतना द्वारा प्रभावित होती हैं। दास प्रथा, पुनर्जागरण काल, निरंकुशता युग, प्रबुद्ध युग, रूमानी युग, क्रांति युग तथा प्रजातंत्र की ऐतिहासिक घटनाएं चेतना से प्रभावित रही हैं। यह चेतना मानवीय मस्तिष्क को प्रभावित करके अपने अनुरूप कार्य करने के लिए प्रेरित, प्रोत्साहित तथा बाध्य करती है। बुद्धि कोई अमूर्त तथा अव्यक्त तत्व नहीं है और इंद्रियातीत दैवी शक्ति है। यह मानवीय जीवन की सामान्य मानसिक स्थिति है। इतिहास विचारों का क्रम और दैवी बुद्धि की प्रक्रिया है। ऐतिहासिक संक्रांतियां काल दंड पर सजाई हुई तार्किक विकास है। प्रत्येक ऐतिहासिक तर्क में सामयिक रहती हैं। इसका स्वरूप द्वंद्वात्मक तथा विरोधात्मक है। 19वीं तथा 20वीं सदी में इतिहास की अवधारणा। आधुनिक युग में इतिहास चिंतन तथा लेखन की विशेषता धर्मनिरपेक्ष, द्वेष रहित, उपदेशात्मक तथा दार्शनिक विचारों से पूर्ण है। विश्व की परिवर्तित परिस्थितियों ने इतिहासकारों को पर्यावरण के परिवेश में चिंतन के लिए विवश कर दिया। धर्म तथा भाव प्रधान विचारों का परित्याग करके मानवीय प्रक्रिया का सूक्ष्म विवेचन इतिहासकारों का उद्देश्य बन गया। उन लोगों ने मानवीय स्वतंत्रता और उनके सुखमय जीवन की परिकल्पना की। इतिहास का क्षेत्र स्वमेव विकसित होने लगा। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों की समीक्षा होने लगी। राजनीतिक इतिहास के स्थान पर सांस्कृतिक अध्ययन इतिहास की विषय वस्तु बन गया। उसके विषय निष्ठ स्वरूप को इतिहासकारों ने वस्तुनिष्ठ स्वरूप में परिवर्तित करना प्रारंभ किया। परिणाम स्वरूप अनेक दृष्टिकोणों का उदय हुआ। आधुनिक इतिहास अवधारणा का विकास नहीं, परिस्थितियों का परिणाम है। धीरे धीरे इतिहास की उत्सुकता और भावुकता आलोचनात्मक तथा इतिवृत्तात्मक हो उठी। इतिहासकारों ने अध्यवसाय से ऐतिहासिक तथ्यों का संकलन किया और पृष्ठ संख्या 71 वैज्ञानिक ढंग से उनकी विवेचना करके इतिहास की रचना प्रारंभ की। इसने नीबूर, बोइक, म्यूलर तथा रॉन्के जैसे अपूर्व विद्वानों और इतिहास लेखकों को जन्म दिया। वैज्ञानिक युग का प्रभाव इतिहासकारों पर पड़ना स्वाभाविक था, क्योंकि इतिहासकार भी कवि तथा साहित्यकार की भांति अपने युग का प्रतिनिधि होता है। वह अपनी कृतियों तथा रचनाओं में तत्कालीन समाज को प्रतिबिंबित करता है। परिणामस्वरूप 19वीं तथा 20वीं सदी में इतिहास को विज्ञान मान लिया गया। प्रोफेसर जेबी ब्यूरी ने इतिहास विज्ञान है न कम और न अधिक स्वीकार किया। जिस प्रकार बाह्य प्रकृति निष्पक्ष विश्लेषण, वर्गीकरण तथा अध्ययन का विषय है, उसी प्रकार इतिहास भी परीक्षण, विवेचन और अनुसंधान का विषय समझा गया। इस दृष्टिकोण से इतिहास का इतिवृत्तात्मक और प्रवृत्ति मूलक अध्ययन किया गया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कुछ विचार वस्तुवाद और वैज्ञानिकता से इतने अधिक उब गए थे कि उन्होंने इतिहास को परीक्षणात्मक तथा विश्लेषणात्मक चिंतन शैली से मुक्त करके एक स्वतंत्र विचार पद्धति प्रदान की। इस विचारधारा के विस्तार में जर्मन दार्शनिकों का विशेष योगदान रहा है। थॉमस बकल ने इस युग की इतिहास अवधारणा के विषय में कहा है कि इस उपयुक्त समय में मानवीय ज्ञान की उच्च शाखाओं से संपृक्त इतिहास का समाज का सर्वांगीण चित्र प्रस्तुत करें। डॉक्टर जी ए मार्गन ने इतिहास को अर्थपूर्ण बनाने का विशेष जोर दिया। इतिहास में सत्यता, यथार्थता, सच्चाई तथा ईमानदारी अर्थ प्रदान करती है। उन्होंने इतिहास में शक्ति की अनुभूति की। 20वीं सदी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इतिहासकारों ने धर्म तथा नैतिकता का परित्याग कर इतिहास लेखन पर जोर दिया। कार्ल मार्क्स इतिहास दर्शन के महान विचारक, देवदूत वैज्ञानिकता तथा नैतिकता के प्रबल समर्थक एवं इतिहास में सामाजिक विचारधारा के प्रवर्तक थे। वे हीगल से सर्वाधिक प्रभावित थे। उनकी विशेष रुचि इतिहास तथा दर्शन में थी। विद्यार्थी जीवन से ही वे सामाजिक समस्याओं में विशेष रुचि रखते थे। एक बार उन्होंने अपने प्राध्यापक से पूछा था कि क्या लोग सोचते हैं कि मनुष्य का प्रकृति, प्राकृतिक विज्ञान तथा उद्योग से संबंध विच्छेद करके इतिहास का एक शब्द भी समझा जा सकता है। क्या उनका विश्वास है कि किसी युग के उद्योग उत्पादन के साधन संबंधी ज्ञान के अभाव में अतीत का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? इतिहास को इन तत्वों से अलग करने का तात्पर्य आत्मा को शरीर से, अपने को विश्व से अलग करना होगा। इस प्रकार इतिहास को प्राकृतिक विज्ञान तथा उद्योग से अलग करना होगा। कार्ल मार्क्स की इतिहास अवधारणा का आधार आर्थिक सिद्धांत है। इतिहास की आधारशिला नियतिवाद है। इसका स्वरूप ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठा की अपरिहार्यता है। यही पृष्ठ संख्या 72 इतिहास का कारण है। नियतिवाद ऐतिहासिक अनिवार्यता का आधार है। सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण आर्थिक विकास होता है। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि विचार, संस्थाएं, राजनीति, धर्म तथा संस्कृति को आर्थिक कारण प्रभावित करते हैं। मार्क्स ने इतिहास पर विचार के प्रभाव को अस्वीकार नहीं किया, परंतु यह कहा है कि विचार वैज्ञानिक तथा दार्शनिक भी आर्थिक कारणों द्वारा नियंत्रित होते हैं। यूरोप में पुनर्जागरण का प्रमुख कारण समुद्री व्यापारिक संपर्क मार्गों की खोज, नवीन उद्योग, व्यापार, जलयानों में सुधार आदि थे। मार्क्स का विश्वास था कि ऐतिहासिक प्रगति का मूल कारण प्राचीन तथा नवीन सामाजिक संगठन के बीच संघर्ष होता है। वाद तथा प्रतिवाद के द्वंद्व के परिणाम स्वरूप साम्यवाद का उदय होता है। साम्यवाद से ही नवीन इतिहास का प्रारंभ तथा प्राचीन प्रथा का अंत होता है। साम्यवाद ही इतिहास का मानववाद है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य सतत प्रयत्नशील है। वर्ग संघर्ष को उन्होंने इतिहास की शक्ति स्वीकार किया है। इतिहास में पूंजीवाद तथा श्रमिकों के बीच संघर्ष स्वाभाविक है। श्रमिकों की विजय में ही मानव प्रगति निहित है। किसी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन में लगाए गए श्रम पर निर्भर करता है। मार्क्सवाद के अनुसार प्राकृतिक शक्तियों पर मनुष्य की विजय इतिहास का विकसित स्वरूप है। सामाजिक व्यवस्था में निरंतर परिवर्तन को इतिहास की गति स्वीकार करते हैं। उत्पादन व्यवस्था तथा सामाजिक परिवर्तन की तीन अवस्थाएं हैं, दास प्रथा, सामंत शाही प्रथा तथा पूंजीवादी। पूंजीवाद इस परिवर्तन का चरमोत्कर्ष है। सभी महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन उत्पादन की प्रक्रियाओं से प्रारंभ होते हैं। इसी को ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत कहा जाता है। मार्क्स की इस अवधारणा ने वर्तमान सामाजिक दृष्टिकोण को अत्यधिक प्रभावित किया है। उसने सामाजिक जीवन के अध्ययन में अन्वेषण की नवीन विधाओं तथा नवीन विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रतिपादन किया। आधुनिक इतिहास अवधारणा पर इसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। रानके, आधुनिक इतिहास के जनक रानके के लॉर्ड एक्टन ने इतिहास का कोलंबस कहा है। उन्हें इतिहासवाद का महान पुजारी कहा जा सकता है। 19वीं सदी में रानके ने इतिहास अवधारणा को नवीन वैज्ञानिक विधाओं से अलंकृत किया है। वे प्रथम इतिहासकार हैं जिन्होंने अपने व्यक्तित्व को लूथरवादी दया, जान फित्से का आदर्शवाद तथा हर्डर और गेटे का इतिहास दर्शन समाहित किया है। सर्वप्रथम उन्होंने ऐतिहासिक स्रोतों की यथार्थता को आलोचनात्मक विधि से निश्चित करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने अपना अधिकांश समय संग्रहालयों में व्यतीत किया। पृष्ठ संख्या 73। उसके वस्तुनिष्ठ ऐतिहासिक शोध तथा उसके वस्तुनिष्ठ ऐतिहासिक शोध का उद्देश्य घटनाओं का यथार्थ प्रस्तुतिकरण था। मौलिक सामग्री के आधार पर ऐतिहासिक भ्रांतियों का पर्दाफाश करना उनका एकमात्र उद्देश्य रहा है। रानके का स्वभाव धार्मिक तथा रोमानी था। परिणाम स्वरूप उनकी रचनाओं में इसका स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। उनके अनुसार इतिहास में ईश्वर निवास करता है, जीवित रहता और उसे देखा जा सकता है। इतिहास के नेता तथा अभिनेता दैवीय शक्तियों के वाहन होते हैं। व्यक्ति और जातियां विश्व प्रगति के उपकरण हैं। दैवीय शक्तियों का आभास विचारों में होता है। विचारों की अंतः प्रक्रिया में इतिहास का रहस्य छिपा हुआ है। ऐतिहासिक अध्ययन की वैज्ञानिकता विश्लेषणात्मक तथा आलोचनात्मक आधारशिला निर्मित करने का एकमात्र श्रेय रानके को है। उनका उद्देश्य तथ्यों की यथार्थता के आधार पर इतिहास का प्रस्तुतीकरण है। ऐतिहासिक शोध की सामग्री ऐतिहासिक स्रोत होते हैं। उनकी रचनाओं में एक ओर वैज्ञानिकता और दूसरी ओर कलात्मकता है। इन नवीन विधाओं द्वारा रचनाओं में सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में एक नवीन क्रांति पैदा कर दी। वस्तुनिष्ठा के आधार पर उन्होंने इतिहास को पूर्ण रूप से विज्ञान स्वीकार किया। वस्तुनिष्ठा की दृष्टि से उनकी इतिहास की रचनाएं उच्च आदर्शों की पूर्ति करती हैं। 19वीं सदी की राष्ट्रीयता से अप्रभावित होकर उन्होंने ऐसा वस्तुनिष्ठ आदर्श इतिहास प्रस्तुत किया जो राष्ट्रीय प्रतिद्वंदिता के बावजूद फ्रांसीसी समाज में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा है। इसी कारण नानके को आधुनिक इतिहास का जनक तथा आधुनिक इतिहास का कोलंबस कहा जाता है। 20वीं सदी में इतिहास की अवधारणा दीर्घकालीन प्रयास एवं सतत चिंतन का परिणाम है। इतिहास की अवधारणा एक प्रकार का आंदोलन है जिसका उद्देश्य संकुचित राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, क्षेत्रीयता की भावना का परित्याग कर विश्व भ्रातृत्ववाद को इतिहास में सार्वभौमिक स्वरूप प्रदान करना है। इस प्रकार का इतिहास किसी विशेष राष्ट्र तथा विशेष समाज के लिए नहीं अपितु संपूर्ण मानव समाज के कल्याण के लिए हो गया। प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्धों के विनाशकारी परिणामों ने इतिहासकारों को विश्व भ्रातृत्ववाद तथा मानव समाज के कल्याण हेतु सोचने के लिए विवश कर दिया। कवि तथा साहित्यकार की भांति इतिहासकार भी काल परिस्थितियों तथा अनिवार्यता की उपज बन गया। सर्वप्रथम एचजी वेल्स ने अपनी रचनाओं में मानव कल्याण, मानव प्रगति तथा विश्व भ्रातृत्ववाद को यथोचित स्थान दिया। सार्वभौमिक मानव कल्याण में उनकी पृष्ठ संख्या 74 आस्था थी। वे आशावादी थे। उनके इतिहास दर्शन के विषय में रटजिन ने लिखा है, संपूर्ण मानव जाति का इतिहास दर्शन इस विश्वास में समाहित होता है कि सभी एक हैं, आदि से अंत तक समान नियम पर आधारित है। एचजी वेल्स का उद्देश्य मानव जाति का सर्वांगीण चित्रण प्रस्तुत करना है। यहाँ उनका इतिहास दर्शन नहीं बल्कि सार्वभौमिक इतिहास है। उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रमुख तीन तत्वों का विस्तृत उल्लेख किया है, विज्ञान, सत्कर्म तथा मानववाद। इतिहासकार का पुनीत कर्तव्य न केवल समाज के विशिष्ट व्यक्तियों अपितु जन साधारण की उपलब्धियों का वर्णन करना है। उन्होंने इतिहास में धर्म की भूमिका को मान्यता प्रदान की है। इसके बावजूद उनका उद्देश्य पूर्ण रूप से सामाजिक तथा सार्वभौमिक विश्व भ्रातृत्ववाद पर आधारित है। उन्होंने नैतिकता की भावना को इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इतिहास के वैज्ञानिक स्वरूप में उसकी पूर्ण आस्था रही है। विश्व इतिहास क्षितिज को सुशोभित करने वाले महान इतिहासकारों में अर्नाल्ड जे टायनबी का स्थान अग्रगण्य है। 20वीं सदी की अनिवार्यता, सार्वभौमिक इतिहास तथा विश्व भ्रातृत्ववाद की प्रेरणा से उनका प्रभावित होना स्वाभाविक था, क्योंकि यही काल तथा परिस्थितियों की अपरिहार्यता थी। अपने जीवन काल में उन्होंने अनेक प्रशासकीय तथा शैक्षणिक पदों को सुशोभित किया है। गिबन की ऐतिहासिक रचना रोमन साम्राज्य का पतन के पश्चात इतिहास जगत में इतनी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रचना करने वाला कोई भी इतिहासकार नहीं हुआ है। इतिहास के अवधारणा में उन्होंने सार्वभौमिक राज्य की कल्पना तो अवश्य की, परंतु इसका परिणाम मानव समाज के लिए कष्टदायक हुआ है। उन्होंने यह स्वीकार किया है कि इतिहास की विषय वस्तु ऐतिहासिक घटनाएं, राज्य तथा समुदाय नहीं है। इतिहास अध्ययन को बोधगम्य क्षेत्र समाज है। समाज ही इतिहास का अड़ु तत्व है। विश्व की 26 सभ्यताओं के विश्लेषणात्मक प्रस्तुतीकरण के माध्यम से उन्होंने एक नवीन इतिहास अवधारणा का प्रतिपादन किया। कार्ल मार्क्स द्वारा भौतिकवादी इतिहास की व्याख्या को उन्होंने मान्यता प्रदान की। किसी भी सभ्यता और संस्कृति के उत्थान में जाति, उच्चता, भौगोलिक परिस्थितियों का महत्व नगण्य होता है। यदि यह सत्य है तो हिटलर एक महान संस्कृति का प्रवर्तक हो सकता था। बहुमूल्य भूगर्भ पदार्थों से संपन्न अफ्रीका को अंधकार महाद्वीपों की संज्ञा न दी जाती। पृष्ठ संख्या 75। टायनबी ने चुनौती, चैलेंज तथा प्रक्रिया रिस्पांस के आधार पर संस्कृतियों का अध्ययन किया है। चुनौती से समस्या की उत्पत्ति होती है, प्रतिक्रिया उसका समाधान प्रस्तुत करती है। चुनौती सामाजिक समस्या है, प्रतिक्रिया समस्या का समाधान है। चुनौती प्रश्न है और प्रतिक्रिया उत्तर है। तैनबी के अनुसार चुनौतियों के सफल उत्तर देने की प्रवृत्ति को उन्होंने विकास कहा है। सभ्यता का विकास सृजनात्मक व्यक्तियों और वर्गों का कार्य है। ये सृजनात्मक व्यक्ति वर्ग निर्गमन विथड्रॉल तथा प्रत्यागमन रिटर्न की प्रवृत्तियों द्वारा कार्य करते हैं। भारत में ब्रिटिश सरकार ने पहले कठोर नीति में विश्वास रखने वाले क्लाइव वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लिटन तथा कार्जन जैसे व्यक्तियों को भेजा। उसके पश्चात नरम नीति वाले बेंटिक, कॉर्नवालिस तथा रिपन जैसे वायसरायों को भेजकर शक्ति का संगठन किया। तैनबी की दृष्टि में इतिहास की महान घटनाएं साम्राज्यों का उत्थान तथा नवीन अन्वेषण का अध्ययन नहीं अपितु महान धर्मों का उदय तथा उत्थान है। अनेक आलोचकों ने उनकी इतिहास अवधारणा की कटु आलोचना की है। इस आलोचना के बावजूद आधुनिक युग के महान इतिहासकारों में उनका स्थान अद्वितीय है। समस्त विश्व का एकीकरण, धर्मों का समन्वय तथा आर्थिक विषमताओं का निराकरण उनके इतिहास अवधारणा की प्रमुख वृत्तियां हैं। समीक्षा। तथ्यों के समीक्षात्मक विश्लेषण के पश्चात स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन काल से 20वीं सदी तक इतिहास अवधारणा का स्वरूप एक समान नहीं रहा है। काल तथा परिस्थितियों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप इतिहास अवधारणा में भी परिवर्तन होता रहा है। प्राचीन काल में इतिहास अतृप्त ज्ञान तृष्णा को तृप्त करने का एक साधन था। मध्य युग में धार्मिक भावनाओं ने इसे विशेष प्रभावित किया। पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार कार्य में मानववादी तथा बुद्धिवादी इतिहासकारों ने रूढ़िवादी दृष्टिकोण की कटु आलोचना की तथा पोप धर्माधिकारियों के विशेषाधिकार की चुनौती दी। इन लोगों ने ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार तो नहीं किया बल्कि मनुष्य के ईश्वरीय अधिकार को चुनौती दी। प्रोटेस्टेंट इतिहासकारों की अवधारणा का स्वरूप सुधारवादी था तथा कैथोलिक धर्मावलंबी इतिहासकारों ने रूढ़िवादी दृष्टिकोण का समर्थन किया। इस युग ने दो परस्पर विरोधी इतिहास अवधारणाओं को विकसित होने का अवसर दिया। बुद्धिवादी युग के इतिहासकारों ने तथ्यों की प्रधानता को महत्व दी। मॉन्टेस्क्यू तथा रूसो ने धार्मिक रूढ़िवादिता की आलोचना करके मानववाद तथा सामाजिक स्वतंत्रता पृष्ठ संख्या 76 को इतिहास का प्रधान लक्ष्य स्वीकार किया। वैज्ञानिक युग का प्रभाव स्वाभाविक था। इतिहासकारों ने इतिहास के वैज्ञानिक अध्ययन की उपादेयता को सिद्ध किया। प्रोफेसर जेबी व्यूरी ने इतिहास को पूर्ण रूप से विज्ञान स्वीकार किया है। 19वीं सदी में कांट, हर्डर, हिगेल तथा कार्ल मार्क्स ने इतिहास अवधारणा को नवीन स्वरूप प्रदान किया। प्रकृति तथा मनुष्य के संबंध को घनिष्ठ बताकर इतिहास अवधारणा को मानववादी सिद्ध किया। यही नहीं बल्कि अतीत अध्ययन को वर्तमान तथा भविष्य के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। 20वीं सदी में इतिहास अवधारणा का लक्ष्य मनुष्य को जातीयता, धार्मिकता तथा राष्ट्रीयता के स्तर से ऊपर उठाकर विश्व भ्रातृत्ववाद तथा सार्वभौमिक आयाम में प्रवेश करना था। विश्व की विभिन्न समस्याओं तथा संस्कृतियों के माध्यम से मानव समाज का एकीकरण इतिहासकारों का उद्देश्य बन गया। स्पेंगलर, एचजी वेल्स तथा टॉयनबी जैसे इतिहासकारों ने संकुचित क्षेत्रीयता तथा राष्ट्रीयता का परित्याग कर विश्व भ्रातृत्ववाद के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इन लोगों ने इतिहास अवधारणा को सार्वभौमिक स्वरूप प्रदान किया। रानके ने इतिहास को वैज्ञानिक विधाओं से परिष्कृत करके वस्तुनिष्ठ इतिहास लेखन को आवश्यक बताया। अंत में हम कह सकते हैं कि इतिहास अवधारणा विभिन्न युगों में काल तक परिस्थितियों का परिणाम रही है।